अपने अपने टॉप जो स्टेट ऑफ द आर्ट ये जो सुकोई SU-35 हैं ये उनको बेचेगा। टर्की के साथ इन्होंने डील्स बना ली हैं, इनको भी SU-35 एंड SU-57 फिफ्थ जनरेशन देगा, क्योंकि हालांकि टर्की नेटो का ऐलान था, यूएसए ने कहा जी हम देखेंगे सोचेंगे तुमको देंगे या नहीं, टर्की ने कहा ओके जी खली वली नो प्रॉब्लम हम दूसरों के पास जाएंगे। इसी तरह जी सीरिया को वो दे रहे हैं, इसी तरह अब अल्जीरिया जो है इज बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ रशियन जो है ये वेपन्स एंड एम्युनिशन। तो वो आज इनकी रिपोर्टर वो कह रहे हैं कि अब रशिया की ये पोजीशन है कि इट इज ओनली नंबर टू इन आर्म्स एंड एम्युनिशन सेल, सेकंड ओनली टू यूएस।
वाओ,
तो जनाब बिलियंस ऑफ
क्रेडिट गोज टू अमेरिकन्स।
हाँ, इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाइडन पाजी का उन्होंने कहा बाइडन पाजी थैंक यू वेरी मच। हाँ। है जी, तो बस जनाब ये रशिया जो है मार्केट जो है पकड़ता चला जा रहा है, तो अपनी बिल्कुल कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स हैं और चीजें इनको बेच रहे हैं अरब्स को वो। तो ये जो है जी ऐसे हुआ है। अच्छा जनाब, बाइडन साहब जो हैं आज उनके ऊपर बहुत दिनों से बहुत प्रेशर था, क्योंकि जब वो इलेक्शन ट्रेल पे थे तो उन्होंने कहा था कि जो ट्रंप साहब की जो रेफ्यूजी के जो है जो कोटा है ये बड़ा ही इनह्यूमन है, और अमरीका तो जो है हमने बिल्ड ही किया था रेफ्यूजीज के ऊपर, और जो इमिग्रेंट्स आए थे तो अमरीका तो है ही इमिग्रेंट्स का मुल्क, तो जो है उन्होंने कहा जी अच्छा जी पाजी हूं तो आप भूल गए हैं ये सारी अपने कहानियां जो हैं। तो इनके ऊपर बहुत दिनों से बहुत प्रेशर था कि बाइडन साहब आप कितने चल रहे हो, आप जो है आपको तो जो है वो अपने वादे ही पूरे नहीं आपको याद है।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
तो उन्होंने कहा
वादे याद दिलाए।
हाँ, वादे याद दिलाए उन्होंने कहा जी ये जो ट्रंप साहब ने कैप लगा दी थी रेफ्यूजीज के ऊपर आने पे अमेरिका में, तो अब आप जो आप उन्होंने कहा था ट्रंप ने कहा था 15,000 खाली हम साल का बुलाएंगे बंदा।
हाँ।
ट्रंप साहब ने सॉरी बाइडन साहब ने आज उसको रिवाइज किया, उन्होंने कहा कि नहीं 6,500 इन दिस फिस्कल ईयर रेफ्यूजीज हमारे मुल्क में अमरीका में आ सकते हैं, हम उनका प्रॉपर पेपर वर्क करेंगे और उनको देखेंगे कि अपना ये जो है ये धारा जो है इसके अंदर, क्योंकि जब ये इलेक्शन ट्रेल पे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इन द नेक्स्ट 2 to 5 years जो है 125,000 जो है रेफ्यूजीज आने चाहिए। तो आज उन्होंने कहा जी इन दिस फिस्कल 62,500 आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अब देखने में ये है कि अब ये काम इसके ऊपर कब शुरू होएगा, तो ये देखने की बात है। अच्छा जनाब, अमेरिका के एक डॉक्टर हैं टेक्सस में वो रहते हैं, पीटर होटेज, और वो हैं डीन हैं बेलॉय यूनिवर्सिटी इन ह्यूस्टन के अंदर। तो उन्होंने आज अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा है कि तुम जिस तरह से तुम्हारा तरीका कार है, जैसे कि आप प्रभाव आपका है, जैसे आपका जो है वो कनाडा के साथ वो सही नहीं है, तो आप इनको ज्यादा वैक्सीन भेजने का प्रबंध करें।
अच्छा,
ठीक है जी। तो उन्होंने कहा है कि कनाडा जो है आपका जो है नेक्स्ट डोर नेबर है, तो अब आप जो है इनके साथ जो है सिर्फ एस्ट्राजेनेका की जो कुछ आपने अनाउंस की है सिर्फ आपका जो है उतना भेजना नहीं बनता, आपका उनको ज्यादा भेजना बनता है, क्योंकि आपके नेक्स्ट डोर नेबर हैं। तो अब देखें ये जो है इसके ऊपर
सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर
है, तो अब देखेंगे इसके ऊपर जो है वो क्या, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडिया को तो आपने भेज दी, तो जो आपके साथ में बैठा हुआ है, क्योंकि उसने एग्जाम्पल दी है, उसने कहा कि कनाडा जो है आपके मुल्क से इसकी पॉपुलेशन 10 times स्मॉलर देन यूएसए है। तो एक ऐसी जगह जो है जिसमें के आपकी एंटायर पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन बसता है, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है वैक्सीन उनको देने की, वो फटाफट अपनी वैक्सीनेशन कर लेंगे लोगों को। तो इसलिए उनको पहले आप भेजें, उनका ज्यादा आप ख्याल रखें। वाशिंगटन पोस्ट की आज एक न्यूज है जी, और वाशिंगटन पोस्ट की इस न्यूज के मुताबिक एक और सोल्जर को जो कि था पार्ट ऑफ विस्कॉन्सिन नेशनल गार्ड, उसको January 6 के राइड्स के सिलसिले में पकड़ा है आज फिर से। वहां पे पकड़ा गया है और उन्होंने कहा है कि इसका नाम है एब्रम मार्कोफ्स्की, और इसको फॉर 4 counts, ये देखें माजिद भाई ये कैसे उन्होंने जो है लोगों को जो वहां पे घुसे थे उसके अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर, और उसको कैसे इन लोगों ने फिगर आउट किया सारे CIA और FBI ने, और अब ये एक एक लोगों को जो है पकड़ रहे हैं। इनका ताल्लुक जो है 128th इन्फेंट्री रेजिमेंट से था, और वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कहती है कि अभी तक 41 मिलिट्री के बंदे जो कि ट्रंप साहब को पसंद करते थे वो अभी तक जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने अरेस्ट कर लिए, पकड़े गए।
वाओ,
तो तो यानी कि ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वो था,
वेरी वेल ट्रेन्ड पीपल.
हाँ, ये सारे ये ट्रेन्ड लोग थे, ये मिलिट्री के बंदे थे, वेटरन्स थे सारे, और कौन कौन था, तो ये थे वहां पे. तो ये आज बड़ी चौंका देने वाली वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, और भी बहुत सारी इसके अंदर उन्होंने फैक्ट्स बताए कि कैसे कैसे CIA और FBI ने इनको फिगर आउट किया, कैसे तस्वीरें देखी, कैसे घंटों इन्होंने ये वीडियोज देखी, लोगों को जो है वो पिन पॉइंट किया, एंड देन दे स्टार्टेड. बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है ये. अच्छा जी, इंडिया का हाल बहुत ही बुरा है. इन्फेक्शन और डेथ्स जो है बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है. आपको पता ही है, मुल्क भी बहुत बड़ा है, 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, बढ़ते जा रहे हैं. जो आज जो नए आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक जो है 20 मिलियन जो है इन्फेक्शन जो है उनको सरपास कर गए हैं, और इन द लास्ट 3 मंथ्स, और डेथ्स जो है वो भी 220,000 को पास कर गई हैं.
एंड कहा यह जाता है कि नेक्स्ट मंथ और मंथ आफ्टर जो है इट्स गोइंग टू बी इवन मोर डेंजरस.
हाँ, वेरी डेडली. इट्स गोइंग टू बी सम ऑफ द डेडलीएस्ट मंथ्स जो कि कहा जा रहा है. और वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल एवरेज जो न्यू कन्फर्म केसेस पर डे की है, वो कहते हैं कि April 1 को वो 65,000 थी, और अब जो है वो 370,000 तक चली गई है. इसी तरह डेथ पर
और अभी ये काउंट भी ऑफिशियल है.
ये ऑफिशियल है, दीज आर ऑफिशियल फिगर्स,
मगर वो
अनऑफिशियल इससे बहुत ज्यादा है.
इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि ये जो अकाउंट आपने दिया ऑफिशियल अकाउंट, ये अकाउंट जो है ये सही नहीं है.
नहीं है, हाँ जी. इसी तरह ऑफिशियल अकाउंट है कि डेथ्स जो थी पर डे 300 हो रही थी, लेकिन अब जो है वो 3,000 पर डे होती जा रही हैं. तो वही अब वाली बात है कि इंटरनेशनल मीडिया सहमत नहीं है इस चीज से. वो कहते हैं कि हम जहां पे खड़े हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या, उनका अपना जो है प्रिंट है, NDTV है, वायर वाले हैं, ये जो सारे ये कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट अभी भी कुछ जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं ये इससे बहुत ज्यादा ऊपर नंबर है जो कि ये कर नहीं रहे. अच्छा, इसका अब फॉलोआउट किया हुआ है, इसका फॉलोआउट ये हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है, भाई देखे ना, आप मीडिया अपने मुल्क में खरीद लेंगे, ठीक है जी, गोदी मीडिया उसको बना देंगे आप. आप लोगों के मुंह चुप करा देंगे, आप उनके ऊपर सेडिशन केस लगा के उनको जेलों में डाल देंगे, आप उनको सजाएं देंगे, मारेंगे पीटेंगे. इंटरनेशनल मीडिया तो चुप नहीं करेगा ना भाई. आपके खुद भी कुछ अदारे चुप नहीं हो रहे. इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो आज की खबरें हैं, तो मैं अब उन सब के मैं आपको नाम लेके उनके बताऊंगी कि आज उन्होंने क्या लिखा है. द अटलांटिक जो है, अटलांटिक के अंदर जो है विद्या कृष्णन जो है वो लिखती हैं कि ये जो इतनी बड़ी ये जो इंडिया के अंदर ये जो आई है, इसमें हालांकि मोदी जी ने बड़ा ब्रूटल शटडाउन भी किया था, इसके बावजूद साइंटिस्ट मोदी जी को बताते रहे हैं कि जो अगले महीने हैं बेतहाशा जो है वो खतरनाक आने वाले हैं. गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ करने के बजाय
एक्शन लेने के बजाय
इलेक्शन रैलियां की, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए, और कोई हेल्थ केयर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया.
सही बात.
जिसकी के वजह से ये जो है इतनी ज्यादा तबाही आई है. और वो कहती हैं विद्या कृष्णन कहती हैं अपने आर्टिकल में कि ये जो इन्होंने हरकतें की हैं, दैट वुड मेक इवन मिस्टर ट्रंप ब्लश. ठीक है जी. ये यूनाइटेड किंगडम का आपको पता ही है कि ब्रिटेन का बहुत बड़ा अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स. हम सारे जो फाइनेंस की खबरें हैं पढ़ने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ जाते हैं. फाइनेंशियल टाइम्स कहती है, अनलेस मोदी टेक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ हिज रोल इन दिस क्राइसिस, मोर फ्यूनरल पायर्स विल बर्न इन दिस नेशन. अच्छा जी, फ्रांस का जो है लेमोंडे जो अखबार है, बड़ा मशहूर डेली न्यूज़पेपर है, वो कहता है मोदीज लैक ऑफ फोरसाइट एरोगेंस डेमागॉग एविडेंटली शोज द कॉज ऑफ सिचुएशन दैट इंडिया इज इन एंड विच इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ. वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो कहती है कि ये जो अब सेकेंड वेव यहां पर आ गई है, और इसके बावजूद जो है रिस्ट्रिक्शंस हमको इतनी स्ट्रिंजेंट लग नहीं रही हैं इंडिया के अंदर, और जो है ये इसी तरह रिलैक्स जो है चीजें चल रही हैं. द ऑस्ट्रेलियन, जाहिर है कि आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़पेपर है, वो कहता है कि इंडियाज क्राइसिस हैज टू बी ब्लेम्ड ऑन मोदीज हाइपर नेशनलिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस. और जो है वो कह रहे हैं कि जी इस सब के बीच में जो फॉरेन ऑफिस इंडिया का, वो बस इसी चीज में लगा हुआ है कि किसी तरह इनको हशअप कराया जाए. ओ भाई साहब, इंटरनेशनल मीडिया को आप कैसे हशअप कराएंगे? आप मीडिया को अपने मुल्क में हशअप करा सकते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में नहीं करा सकते. अच्छा जनाब, आज हिंदू की रिपोर्ट है, एंड दिस इज आई मीन ऑफकोर्स बहुत बड़ा न्यूज पेपर है इंडिया का. हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जो है आज जो है जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने आज सेंटर को बड़ी, जो सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट है उसको बड़ी फटकार लगाई है. और उन्होंने कहा है, और उनके सेंटेंसेज में आपको पढ़ के सुनाऊंगी, दैट्स हाउ यू नो लॉ वर्क्स विच वी एडमायर इन इंडिया. उन्होंने कहा जी कि आपने वादा दिल्ली से किया था कि 700 मैट्रिक टन जो है ऑक्सीजन पहुंचेगी, लेकिन यहां पे 490 मैट्रिक टन पहुंचने का अपना वादा किया और वो भी नहीं पहुंच रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 700 मैट्रिक टन हर हाल में आनी चाहिए। तो आपको क्या नजर नहीं आ रहा है? तो उन्होंने कहा जी मोदी जी की गवर्नमेंट को कि बीजेपी की गवर्नमेंट ऑस्ट्रिच की तरह अपना सर सैंड में दे सकती है, हम दिल्ली हाईकोर्ट वाले नहीं देंगे, और हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि अपने ये जो आइवरी टावर में रह रहे हो ना, इससे नीचे उतरो और कंडीशन दिल्ली की देखो क्या होती जा रही है। तो उनके आज ये वर्ड्स थे बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि हम वरना आपकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंटेंप्ट का जो है वो चार्ज लगाएंगे। दिल्ली कोर्ट का कहना है कि कंटेंप्ट इज द लास्ट थिंग ऑन द माइंड बट इट इज सर्टनली देयर, वी विल नॉट टेक नो फॉर एन आंसर। सेंटर को कह रहे हैं वी विल नॉट टेक नो फॉर एन आंसर, देर इज नो वे यू वॉन्ट सप्लाई 700 मेट्रिक टन टू डेली, वी डोंट वॉन्ट टू हेयर एनीथिंग एल्स बट कंप्लायंस।
वाओ, दैट्स स्ट्रांग।
जी जी, तो वर्ड्स आप देखें जरा जो आज की जजमेंट आई है दिल्ली हाईकोर्ट की। हाँ, तो ये जनाब ऐसे हैं। अच्छा जी, वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी इलेक्शंस आए थे उसके उसमें अब जो पोस्ट पोल जो वायलेंस है वो कॉन्स्टेंटली चलती जा रही है वहां पे। आज 14 लोग जो हैं उनकी पिछले जो 36 आवर्स थे उनके मौत की जो है वो खबरें आई हैं, जिसमें से कि बीजेपी क्लेम करती है कि हमारे 3 वर्कर्स थे, टीएमसी कहती है हमारे 3 जो थे वर्कर्स थे, लेकिन वहां पे आग लगाई जा रही है प्रॉपर्टीज को, वहां पे जलाया जा रहा है और मारा जा रहा है और बड़ा कुछ वहां पे चल रहा है। और जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है उसको तो यहां तक की खबरें आई हैं कि जो है ये टीएमसी के जो लोग हैं इन्होंने शायद गैंग रेप किया है, लेकिन जो बंगाल की पुलिस है उन्होंने कहा कि ये सारे फेक क्लेम्स हैं, गैंग रेप्स नहीं हुए, दंगे जरूर यहां पे हुए हैं और हम उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जनाब, द वायर की आज एक और बहुत चौंका देने वाली खबर है मजद भाई, एंड दिस इंटरव्यू इज टेकन बाय करण थापर, आपको पता ही है उनके एडिटर इन चीफ है द वायर के, और उन्होंने इंटरव्यू जो है किसी आम मामूली आदमी का नहीं लिया है, उन्होंने इंडिया के जो टॉप साइंटिस्ट हैं एंड ही इज द मेंबर ऑफ इंडिया सार्स कोव 2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टिया, जिसका के शॉर्ट में कहते हैं इन सैकॉग के जो टॉप साइंटिस्ट हैं इंडिया के, उनका जो है आज इंटरव्यू लिया है, और इनका नाम है डॉक्टर राकेश मिश्रा एंड ही इज द सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल सेंटर जो हैदराबाद है उसके डायरेक्टर हैं, उसके साथ हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन सैकॉग जो थी, ये 10 नेशनल टॉप नेशनल जो मेडिकल जो बोर्ड्स हैं उनसे मिलकर बनाई थी, जिसमें कि ये सारे टॉप साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। करण थापर को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर मिश्रा ने, राकेश मिश्रा ने कहा है कि मार्च के महीने में ही हमने जो है ये बता दिया था मोदी जी की गवर्नमेंट को कि आप फॉरेन प्राइम मिनिस्टर को बताएं कि आने वाले दिन जो हैं इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स डेंजर एंड वी हैव ह्यूज कंसर्न्स। वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि पीएम ऑफिस के लोगों में इतनी जुर्रत हो कि जब उनको कोई बात बताई जाए तो वो पीएम को ना बताएं, तो ये मानने को मैं तैयार ही नहीं हूं कि प्राइम मिनिस्टर को ये जो सिवियरिटी ऑफ सिचुएशन थी। वो कहते हैं इसके अलावा हमने हेल्थ सेक्रेटरी को बताया है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि हेल्थ सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को जाके ब्रीफ ना करे, क्योंकि उसकी वजह क्या है? तो करण थापर साहब ने कहा कि उसकी वजह फिर क्या है? उन्होंने कहा जी उसकी वजह ये है कि ये इन सैकॉग जो है गवर्नमेंट ने ही बनाया है, और इसीलिए बनाया था इन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट ने कि हमको सारा वक्त आप इन्फॉर्म करते रहे वायरस की सिचुएशन पे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक अदारा जो गवर्नमेंट ने बनाया वो अदारा कॉन्स्टेंटली रिकमेंडेशंस दे रहा है और उसकी रिकमेंडेशंस नहीं ली जा रही?
सही।
तो इसलिए ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि वेरिएंट्स भी आ रहे हैं और जो मुल्क की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो गवर्नमेंट ने दे डिड नॉट पे एनी हीड टू आवर,
दे वर मोर बिजी इन इलेक्शंस।
यस, दे वर इलेक्शंस, और वो तो ये जो है तो वो कहते हैं जी हमने सारा कुछ बताया था तो इनको पता होना चाहिए। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको पता ही है NA 249 जो कराची के अंदर हुए थे उसके अभी बदबख्तियां चल रही हैं। पीपीपी वहां पे जीती थी, पीएमएलएन ने कहा हम नहीं मानते, ये जो है फिर से रिकाउंट कराएं। बहरहाल जी, इन्होंने एक एप्लीकेशन जो थी ये पीएमएलएन के लीडर मिफ्ता इस्माइल इन्होंने डाली थी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है अब तुम लोगों सबको सुबह 9 बजे 6 मई को आना है वहां पे, और वहां पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके सामने फिर से रिकाउंटिंग होगी इसकी, काउंट किए जाएंगे वोट्स और फिर हमें पता चलेगा। तो जाहिर है कि जो पीएमएलएन के प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं वो बड़ा इस बात पे खुश हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फहद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा है जी कि हमने अब दो ऑर्डिनेंसेज जो हैं वो पास किए हैं और ये दोनों ऑर्डिनेंसेज जो हैं ये इलेक्शन से में रिफॉर्म्स लाने के हैं। और इमरान खान साहब बहुत अरसे से अपोजिशन को कहते थे हमारे साथ बैठो, हम इलेक्शन के ये जो रिफॉर्म्स हैं वो लाएं ताकि इलेक्शन के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होए। अब इन्होंने नहीं बैठे, नहीं आए और अब ये देख लें फड्डा पड़ गया एनए 249 कराची का। तो इसलिए जो है बजाय गवर्नमेंट को करने के बजाय ये दो हम ऑर्डिनेंसेज ला रहे हैं, इसको पास करें ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके जो है, ताकि सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा तो उसमें बेईमानी कैसे आप करेंगे भाई, कैसे आप वो दो वोट निकालेंगे या दो डालेंगे, कर नहीं सकते। अच्छा जी, आज तो नैब ने बहुत ही कमाल का काम किया है। नैब ने आज कोर्ट को जो है एक भेजी है, एक अपनी तरफ से एक अर्जी भेजी है और नैब ने कहा है जी कि पिछले 20 साल से ये जो चौधरी बरादरान थे शुजात और वो इलाही साहब, इनके जी हम बड़े अरसे से पीछे पड़े हुए थे, हम करप्शन के चार्जेस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, हमको नहीं मिले, इसलिए ये आप खारिज कर दें जी इनका केस। तो फिर भाई साहब पिछले 22 साल से तो जरदारी पे भी केस चल रहे हैं, उनके भी खारिज कर दो। फिर वो बेचारा जो है परवेज मुशर्रफ, उसको क्यों बाहर बिठाया हुआ है, उसको भी माफ कर दो, उसको भी आने दो, फिर सारों को आने दो, सारे मिलकर लूटे ना। फिर मुशर्रफ साहब ने तो खैर नहीं लूटा, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन जिन्होंने लूटा पॉलिटिशियनों ने उन सबको फिर मिलकर लूटने दो। हाँ, सबके केसेस नैब शैब खत्म करो, ये नैब के ड्रामे के हैं, फिर ये माफ कर लें आप, सारों को माफ कर दें, ठीक है ना जी, ताकि हम जैसे जो बेचारी अभी गरीब आवाम है वो पिसती रहे और आप मजे करते रहे, बस यही होएगा फिर, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारी जो बाजी आपको पता है ना कि वो तो उसका दिल करता है कि वो रोज खबरों में होए, तो कंगना बाजी जो है आज फिर खबरों में है और कंगना बाजी के साथ आज तो बड़ा ही हाथ हुआ है और ट्विटर ने इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है जी। हाँ, अब ये कोई कहानियां नहीं पा सकेंगे ट्विटर
नहीं तो मतलब, हाँ। मतलब ये फिर तो इनका लेवल जो है ट्रंप का हो गया ना,
ट्रंप साहब के लेवल पे पहुंच गए, शी इज टेकिंग इट दैट वे, माइंड वो कह रही है कि मेरा जो अब जो स्टेचर है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसा है, ठीक है जी। अच्छा जी, हुआ क्या है, ट्विटर ने कहा है कि ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी आई थी, इन्होंने बहुत जो इलेक्शंस हुए थे, इन्होंने ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा उनके खिलाफ बोली थी और इन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी की वजह से बंगाल के अंदर वायलेंस हो रही है और इसके अलावा उन्होंने जो तस्वीरें डाल के उन्होंने कहा जी डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, तो अनकॉल्ड फॉर थे इनके जो कॉमेंट्स थे। जनवरी में भी यही किया था, सोशल मीडिया पोर्टल्स इनको सस्पेंड कर दिया था, अब फिर इन्होंने जो है सस्पेंड कर दिया। इससे पहले जो ट्विटर ने किया था वो इन्होंने वो जो मूवी नहीं आई थी तांडव, जिसके ऊपर वो बड़ा वो हो गया था कि रिलीजियस हमारे जो हैं वो सेंटीमेंट्स हर्ट हुए, उसके ऊपर भी इन्होंने वो अमेज़न की जो सीरीज थी उसके ऊपर बड़ा जो है वो एतराज किए थे, तब भी हुआ था, तो आज फिर से इनका कर दिया है। तो अब ये थोड़े दिन चैन से बैठेंगे मैं भी, तो अब आपको बाजी की थोड़े दिन जो है ना कहानियां सुनने को नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। वी आर रीचिंग राइट एट द एंड ऑफ अवर न्यूज। पाकिस्तान जो है अब अपना सेकंड टेस्ट जो कि 7 मई को है उसकी तैयारियां उन्होंने जिम्बाब्वे में शुरू कर ली हैं। आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है टेस्ट को लीड कर रहा है 1-0 से, तो अब देखेंगे दूसरे में क्या होता है। इसके अलावा जो हमने आपको बताया था थोड़े दिन पहले कि जो 6th एडिशन ऑफ PSL 2021 था वो अब हो गया था पोस्टपोन और उसके बारे में PCB ने कहा था कि जैसे ही हालात अच्छे होंगे तो हम June 1 को करेंगे अपने जो है ये मैचेस, कराची के अंदर होने थे, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की हालत बहुत खराब होती जा रही है तो PCB ने कहा है कि हो सकता है हम बाकी के जो रिमाइंडर ऑफ द जो मैचेस हैं ये PSL के वो हम दुबई में करा सकते हैं। हाँ जी, तो ये दुबई में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जी आज तो कमाल कर दिया PCB ने, जो फीमेल जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए पूरा आज जनाब एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है उन्होंने अपने लिए यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने अनाउंस किया है। उन्होंने कहा जी कि हम एनकरेज करना चाहते हैं कि लड़कियां औरतें जो हैं वो क्रिकेट के अंदर आएं, जिनके बच्चे होंगे उनको हम मैटरनिटी लीव देंगे उसके साथ पैसों के साथ, अगर कोई वो अपने बच्चे को साथ लेके जाना चाहती हैं तो वो अपना जो कोई एक आदमी जानने वाला होगा उसको साथ भी लेके जा सकती हैं, आधे पैसे हम देंगे आधे ये खुद डालेंगी जो खर्चा होगा। इसके अलावा जो है ये मर्द जो हैं उनको भी 30 डेज के लिए, जो मर्द जो जिसका बच्चा होता है जिसके घर में, तो उसको भी 30 डेज हम पेड लीव जो है वो दे सकते हैं। तो आज जनाब ये जबरदस्त किस्म की जो है इन्होंने ये चेंजेस, वेरी गुड रिफॉर्म्स, वेरी वेरी गुड रिफॉर्म्स, क्योंकि वो कहती हैं कि वो जब बच्चा हो जाता है लड़कियों का तो वो छोड़ देती हैं, वो नहीं आती हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज एंड वेरी वेरी सैड, IPL सस्पेंड हो गया जी। اب بڑے عرصے سے کیونکہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے اور جو تھا بی سی سی آئی والے وہ کہتے تھے کہ نہیں اتنا ٹینشن کا ماحول ہے انڈیا کے اندر تو یہ ایک سپورٹ جو ہے چیئر لاتی ہے کنٹری کے اندر تو ہم یہ کنٹینیو رکھیں گے لیکن اب چونکہ کیسز بہت بڑھ گئے ہیں سٹاف کو ہو رہا ہے کرونا وائرس پلیئرز کو ہو رہا ہے تو آج جو ہے وہ
فورن پلیئرز جو تھے نا
جی جی جی
بڑا ڈینجرس
ڈینجرس تھا تو تین کلبز خاص طور جو ہیں ان کے پلیئرز کافی زیادہ اس بیماری سے جو تھے وہ ہو رہے تھے تو آج بی سی سی آئی نے کہا ہے کہ ہم سیفٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں اور یہی اب جو کہ ہم نے تھوڑے دن بھی پہلے بھی بتایا تھا اور اب پھر بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ریزیوم کریں گے تو ہو سکتا ہے یو اے ای میں ہی دبئی میں ہی ریزیوم کریں انڈیا میں نہیں کر پائیں گے تو جناب یہ تھی ہماری آج کی
تازہ ترین
خبریں
جی 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 تھینک یو سو مچ
تھینک یو مچ بھائی آئی ول سی یو ٹمارو
کچھ اسپانسرز کے پیغامات لیتے ہیں اس کے فوری بعد پروگرام میں واپس آئیں گے سات بجے تک عرفہ جی ہوں گی میرا خیال ہے عرفہ جی دری عرفہ جی ہوں گی ہمارے ساتھ اور اس کے بعد پھر ساڑھے
بوریا بستر تو ان کا سرائے دری پڑا
بوریا بستر تو دری ہے تو مطلب وہ کہ جا نہیں سکتے دور
نہیں جا سکتے
اسٹے ٹیون ول بی رائٹ بیک
چار سو سولہ پانچ سو دو آٹھ ہزار سٹریس چاہے لاکھ دا ہوئے یا کاکتا اس زندگی مشکل کر دیتا ہے باقی باتیں ایک طرف آپ کے فائنینشل سٹریس کا حل ہے شیراز شفیق جن کے پاس ہیں ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈز لاسٹ منٹ کلوزنگز ہوں یا ڈیفیکلٹیز سبھی کے لیے شیراز شفیق 416-502-8000 لائسنس نمبر 10845 انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ
Your census invitation has arrived in the mail. Your participation will help plan programs and services for your community. Your census, your community, your future. A message from the Government of Canada.
کیا آپ یا آپ کی فیملی ڈیتھ ڈسبلٹی یا کریٹیکل النس جیسی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار ہے اگر نہیں تو سن لائف کے پردیپ جی کا نام یاد رکھیے گا 416-894-5872
جی ہاں سلام مشورے اور کسی بھی پالیسی کے ریویو میں پردیپ سنگھ آپ کی پوری مدد کروں
ٹرسٹ وردی آنیسٹ چارٹرڈ لائف انڈر رائٹر اینڈ کینیڈین ہیلتھ اسپیشلسٹ مسٹر پردیپ فرام سن لائف 416-894-5872
اور ہر ٹیوزڈے کو میرے ٹاک شو میں ضرور شامل ہوں
کووڈ 19 کی ویکسین ہے اور آپ
مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کووڈ 19 کی ویکسینیں محفوظ ہیں
جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو سوالات کا ذہن میں آنا عام بات ہے ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کینیڈا صرف ان ویکسینوں کی منظوری دیتا ہے جو محفوظ مؤثر اور اعلیٰ ترین معیار کی حامل ہوتی ہیں کینیڈا اپنے اعلیٰ معیارات اور سخت گیر ویکسین کے جائزے کے عمل کی بدولت دنیا بھر میں جانا جاتا ہے کووڈ 19 کی ویکسینوں کے بارے میں canada.ca/covid-vaccine پر مزید معلومات حاصل کریں حکومت کینیڈا کی طرف سے ایک پیغام
ڈاکٹر مجیب قاضی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ دانت نکلوانے ہیں لگوانے ہیں کراؤنز ہیں بریجز ہیں ایون اگر امپلانٹس یا بریسز لگوانا چاہتے ہیں تو برامپٹن میں ہینسن اور کوئنز کے انٹرسیکشن پہ اور اب سگما ڈینٹل کلینک ولیمز پارک وے اینڈ کرائسلر کے انٹرسیکشن پہ بہترین ڈینٹسٹ تمام انشورنس پلان کو ایکسپٹ کرتے ہیں اپوائنٹمنٹ بنائیے گا ساز و آواز کا حوالہ دے کے ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے گا ڈاکٹر مجیب قاضی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ 9054578661
کووڈ 19 کی ویکسین ہے اور آپ
مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کووڈ 19 کی ویکسینیں محفوظ ہیں
جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو سوالات کا ذہن میں آنا عام بات ہے ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کینیڈا صرف ان ویکسینوں کی منظوری دیتا ہے جو محفوظ مؤثر اور اعلیٰ ترین معیار کی حامل ہوتی ہیں کینیڈا اپنے اعلیٰ معیارات اور سخت گیر ویکسین کے جائزے کے عمل کی بدولت دنیا بھر میں جانا جاتا ہے کووڈ 19 کی ویکسینوں کے بارے میں canada.ca/covid-vaccine پر مزید معلومات حاصل کریں حکومت کینیڈا کی طرف سے ایک پیغام
کہیں مارگیج نہیں مل رہی جھٹ پٹ مارگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گی آسان 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام ہر قسم کی ریزیڈینشیل یا کمرشل مارگیج کے لیے مارگیج الائنس کی جیسمین پرمار سے رابطہ کریں ری فائنینسنگ آپشنز رینیول آپشنز مارگیج ڈیفیکلٹیز ڈاؤن پیمنٹ ایشوز सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट फंड्स सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
आइए टोरंटो को वैक्सीनेट करें, अपनी बारी आने पर कोविड की वैक्सीन लगवाएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए toronto.ca/covid19 पर जाएं या कॉल कीजिए 888-999-6488।
Rajdhani Sweets and Restaurant is now open for takeout services at Meadowville Town Center, Winston Churchill and Battleford Road, Mississauga. Rajdhani Sweets and Restaurant is now open for takeout services at Meadowville Town Center, Winston Churchill and Battleford Road, Mississauga.
पहली से 7 मई तक सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मना रहा है अपने जवानों के साथ नेशनल यूथ वीक। जी हाँ, पहली से 7 मई तक पूरा एक हफ्ता, जिसमें होंगी मुफ्त वर्चुअल एक्टिविटीज, सेशन और बहुत से इनामात। brampton.ca/recreation पर जाकर रजिस्टर करके कूपन कोड हासिल करें, जिसमें फ्री मीडियम साइज डोमिनो पिज्जा, ईडी गेम्स के गिफ्ट कार्ड और निंटेंडो स्विच कंसोल प्राइस पैक जैसे इनामात जीतने का मौका। मजीद मालूमात इन प्रोग्रामों के रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें brampton.ca/recreation।
अगर आपके घर में बेड बग्स हैं या किचन में कॉकरोचेस हैं या बेसमेंट में चूहे दौड़ते फिर रहे हैं, तो उसके लिए एक ही नाम याद रखिए, बायोकैम पेस्ट कंट्रोल। हम आपको बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस बेहतरीन रेट्स पर फ्राहम करेंगे। उसके लिए डायल कीजिए 416-747-6600 या मुझसे यानी आलिजा से डायरेक्ट रब्ता कीजिए 6478484020।
सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा। हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में, चेन्स में। आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में, रूबी ज्वेलर्स।
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin।
जी साहब, एक दो फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। हमारे फम जफर और आज अफ्तारी का टाइम अगर हम आपके साथ शेयर करें तो अफ्तार का टाइम जी माजिद भाई आज क्या है?
8:25
पे अफ्तारी का टाइम होगा। 8:25 अफ्तारी प्लीज़ आप हमारे साथ कीजिएगा। ई आवाज़ अगर आप पाकिस्तानी चैनल्स पर जाते हैं, ई आवाज़। अदरवाइज देयर इज अ सिंपल वे, अगर आप हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे अगर आप आए तो यहाँ पे रेडियो सुनने की ऑप्शन है और टेलीविजन देखने की ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस आपके साथ है। हमारे अफ्तारी के सेगमेंट्स हकीकत में इट्स अ ब्यूटीफुल 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 सेगमेंट, जिसमें शेख यूसुफ बदात साहब की तिलावत कलाम पाक हुआ करती होती है और उसके बाद फिर हम आपके साथ शेयर करते होते हैं अफ्तारी का सेगमेंट। यूसुफ बतात की दुआ होती है, बहुत खूबसूरत दुआ होती है। आई एम श्योर यू विल लव इट। दुआ है, अपनी ज़ुबान में बात करें, अरबी में बात करें, कम्युनिकेट करें अल्लाह सुबहाना उतारा से। आज जब मैंने बात की तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए, हर इंसान का अपना स्कूल ऑफ थॉट है, यू हैव योर ओन स्कूल ऑफ थॉट, मगर एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं ये कहूँ कि कुरान मेरा आइडियल है या रसूल पाक मेरे आइडियल हैं, नो, My life is according to Quran Pak and my life is according to Aap Sallallahu Alaihi Wasallam. That's my urna, bichona, sona. That is manual of my life. Yes, ideals hamari zindagi ke hote hain, ki for short term ideals and long term ideals hain ki main kaise apni zindagi ko bitana chahti hu. Magar ek baat yaad rakhiyega ki I understand aapka apna school of thought hai, you keep your school of thought, magar I believe ki main agar har religion ke sath nafrat bhi rakhu aur main unki jo provided sahuliyat hai unko istemal bhi karu. Dekhiye, what a beautiful service I have. This phone, invented by a non-Muslim. Aap imagine kijiyega, it has my Quran, it has all my family, jisme mujhe apni family ke dukh, dard, gham, takleef ko pata chalta hai. This is a device which connects me around the world. It has the azan segment which keeps me aware ki what is my azan, my call timing when I have to offer my prayer. Magar वो ये बिल्कुल यूं ही समझ लें कि अमल में हम सिफर हैं और कॉल में हम बुलंदोबाला, कि मेरा आइडियल मेरे डिफरेंट लोग हैं, बट माय लाइफ इज अकॉर्डिंग टू कुरान पाक एंड सुन्ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो आपने मुझे प्रोवाइड की. एनीवेज, सुन रहे हैं प्रोग्राम साज़ आवाज़, मैं आपके साथ आज का मुजफ्फर. कुरान पाक की बहुत सारी दुआएं हैं और आज बहुत से लोगों का 23वां रोज़ा, बहुत से लोगों का 22वां रोज़ा होगा. कुरान पाक की मुख्तलिफ मसाजिद में तिलावत का सिलसिला भी जारी है और मैं बल्कि सोच रही थी कि आप इमेजिन कीजिएगा कि हमारी शाम की जो नशरियात हैं हमारे IP टेलीविज़न पर, ई आवाज़ पर, उसमें हम जो तरावी का सेगमेंट है वो अनातोलिया मस्जिद से आपके साथ शेयर करते हैं, जहाँ से इमाम मुस्तफ़ा बहुत खूबसूरत दरमियान में आके या टुवर्ड्स द एंड वो पूरे जो उस दिन का सिपारा पढ़ने वाला होता है, ये पढ़ा गया जो सिपारा होता है उसके बारे में तफसील बताते हैं कि आज के सिपारे की क्या इन्फॉर्मेशन है. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही बात करते हैं तो आज ये की खबर है हिजरे अस्वद के बारे में. हिजरे अस्वद अब क्या है, बहुत से लोग हिजरे अस्वद के बारे में, यकीनन जब काबा पहली बार तामीर हुआ था तो ये जन्नत का एक पत्थर है, आसमान से आया हुआ पत्थर है, जिसको हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ में नसब किया था. उसके बाद फिर एक दो बार मसला भी आया, ये स्प्लिट भी हुआ, दो हिस्सों में भी टूटा. अभी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल, इट टुक अराउंड 5 to 6 आवर्स इसकी जो वीडियो शॉर्ट्स बनाने में. लुक एट दिस, जन्नत का टुकड़ा है, इसमें लाल और उसका ये पूरा का पूरा वो नहीं है, इसको फिर उसके बीच में लगाया गया है, वो रेड पार्ट एंड द ब्लैक पार्ट, दैट इज हिजरे अस्वद. हिजरे अस्वद टूट गया था, उसके बाद फिर इसके टूटे हिस्सों को इसके बीच में नसब किया गया था. अब इन्होंने तकरीबन 5 या 6 घंटे की फोटोग्राफ्स लेने के बाद इसको नई टेक्निक से जन्नत के पत्थर की हैरत अंगेज तस्वीर बनाई है. सुभान अल्लाह. कहते हैं कि खाना काबा के जनूब मशरकी हिस्से पर मौजूद मुकदस पत्थर हिजरे अस्वद की ऐसी तस्वीर पहली मरतबा मंजरे आम पर आई गई है. एक्चुअली इट टुक 5 to 6 आवर्स टू गेट दीज पिक्चर्स एंड देन अराउंड 41 आवर्स टू पुट ऑल द पिक्चर्स टुगेदर. इंतहाई हाई पिक्सल्स में इस तस्वीर को तैयार किया गया है. कहते हैं कि मस्जिदुल हराम के अमूर की निगरानी करने वाले इदारे ने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से ऐसी तस्वीर शेयर की हैं जिन्हें अब तक हिजरे अस्वद की इंतहाई बारीक बीनी से बनाई गई तस्वीर में शुमार किया जा रहा है. इस इदारे के मुताबिक फोकस टेक पेनोरामा नामी फोटोग्राफिक टेक्निक, लेटेस्ट जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करते हुए 7 घंटे बाकायदा ये तस्वीरें बनाई जाती रही और 50 घंटों का, अच्छा मेरे नोटिस में 41 आवर्स आए थे, 50 आवर्स लगे उन ऑल टू पुट ऑल दोज पिक्चर्स टुगेदर. यानी तमाम पिक्चर्स को इकट्ठा करने के बाद हाई रेजोल्यूशन की एक तस्वीर तैयार की जाती है जिसकी क्वालिटी बेहतर होती है और इसके जरिए तस्वीर की बारीकियों पर भी बखूबी नजर डाली जा सकती है. एक्चुअली दे जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट कि जन्नत की क्या, इस पत्थर के बीच में क्या इसकी केमिस्ट्री स्पेशल है. ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया गया है कि तस्वीर बनाने में 7 घंटे सरफ हुए, 1050 फॉक्स जो स्टॉक पेनोरामा बनाए गए, 1050 के करीब फोकस्ड पिक्चर्स, इसकी पैनोरामिक पिक्चर्स, फोकस्ड पैनोरामिक पिक्चर्स बनाई गई थी। और फिर 50 आवर्स की प्रोसेसिंग के बाद ये जो 1050 पैनोरामिक पिक्चर्स हैं इनको मर्ज करने के बाद ये फिर ये वाली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इनको इस वक्त हासिल हुई। ऑफकोर्स इसकी जो हैथ है वो अंडे की मानिंद है। अच्छा, अब मजे की बात ये है, अगेन यहाँ पे अगेन थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है। ये पूरा का पूरा हिजरत नहीं, हिस्से हिजरत को गाढ़ा गया है किसी एक मटेरियल के बीच में लगाया गया, जो ओवल शेप हमको नजर आ रही है, दिस इज नॉट द होल थिंग इज नॉट हिजरत, इसको माउंट किया गया है फिर किसी चीज के अंदर। बहरहाल वो कहते हैं इसका कुतर जो है तकरीबन 30 सेंटीमीटर है, खाना काबा के जनूब मशरकी कोने के ऊपर ये वाकया है। अक्सर सार्फिन खूबसूरती के हवाले से बात करते हैं, हिजरत की तारीखी अहमियत है। तारीखी अहमियत मैं आपके साथ शेयर कर सकी हूँ कि हज की गरज से खाना काबा का तवाफ करने वालों के इस पत्थर का चूमना लाजमी होता है। और तारीख इसकी ये है कि इस्लाम में इस्लाम से पहले से ये पत्थर मौजूद है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बहुत पहले हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने जब काबा शरीफ की बुनियादों को इस्तवार किया था तब ये पत्थर की आमद जन्नत से हुई थी। रिवायत के मुताबिक ये पत्थर जन्नत से उतारा गया था जब हज़रत इब्राहिम और उनके साहबजादे हज़रत इस्माइल दोनों ने काबा शरीफ को तामीर किया था। आप साइड पे अगर देखते हैं तो एक साइड पे आपको मुकाम इब्राहिम नजर आता है, वो काबे इब्राहिम में आज भी वो पत्थर अंदर उसकी जालियों के बीच में आप देख सकते हैं। ये वो पत्थर है कि जब काबा शरीफ की तामीर शुरू हुई थी तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो उस पत्थर के ऊपर खड़े होते थे, और फिर जब बुलंदी की तरफ चला गया था तो ये पत्थर आपको ले के ऊपर जाता था, क्योंकि इंसान के कद से ऊंची दीवारें थी, तो वो मुकाम इब्राहिम पे आज भी वो पत्थर नसब है। हज़रत इब्राहिम के साहबजादे इस्माइल के साथ मिलकर जब खाना काबा की तामीर जारी थी तो हिजरे अस्वद जन्नत उन्हें तामीर मुकम्मल करने के लिए एक पत्थर की जरूरत थी। पैगम्बर इस्लाम को नबूवत दिए जाने से पहले काबा की मुरम्मत हुई थी, जिसके बाद हिजरे अस्वद को इसकी जगह रखने के लिए कबाइल में इख्तलाफ हुआ था। आपको याद ही होगा कि वो यही था कि क्या होगा, कौन इसको लगाएगा, कौन लगाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का नाम दिया जाता था। फिर ये हुआ कि भाई कल सुबह जब काबा शरीफ में जो सबसे पहले आएगा ना वो फैसला करेगा, क्योंकि कुरैश के जितने कबाइल थे वो हर इंसान अपने तई बहुत बड़ा था, तो कौन इसको नसब करेगा। तो अल्टीमेटली झगड़ा होने का अंदेशा था, तय ये पाया कि कल सुबह जो सबसे पहले काबा शरीफ में तशरीफ लाएगा वो इसको लगा देगा। अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तशरीफ लेके आते हैं, तो फिर तय पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहानत और फतानत की बात सुनिएगा कि आपने फरमाया कि एक चादर के बीच में इसको रखा गया, और कुरैश के जो बड़े कबाइल थे उनको कहा कि चादर का एक एक कोना पकड़ लो, और कोना पकड़ के पत्थर को वहां से मुतल्लिका मुकाम तक लेके गए, और वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दिया। यानी फैसला हुआ कि कल जो पहला शख्स काना काबा में आएगा वही फैसला करेगा। सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने अपने हाथ से उन्होंने वो चादर रखी, और चादर पे तमाम लोगों ने, यानी झगड़ा भी ना हुआ और मामला भी तय हो गया। तो बहरहाल ये तो थी एक सूरत हाल जो मैंने आपके साथ हिजरे अस्वद से मुतल्लिक करनी थी, यानी 7 घंटे की तस्वीरें बनाने के बाद इन पिक्चर्स को तकरीबन 10,050 के करीब तस्वीर। लुक एट दिस काबा शरीफ, माय गॉड, अगर आप नहीं देख रहे लुक एट दिस, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ काबा शरीफ। प्रीवियस स्क्रीन, यानी इट वॉज सो सिंपल। कहते हैं कि मस्जिद नबी जितनी जगह के ऊपर है ना, एक जमाने में पूरा का पूरा मदीना पाक इतनी जगह पे था, जितनी बड़ी जगह पे अब आपको मस्जिद नबी नजर आती है। लुक एट दिस काबा शरीफ, इट वॉज सो सिंपल, एंड कितनी छोटी सी जगह थी, और अब देखिए काबा शरीफ कितना फैल गया, उसके इर्द गिर्द की इमारतें भी कैसी हैं। बहुत शुक्रिया।
मगर ये एक चीज पे आप फिर नोट करें कि इतना ऊंचा और इतना बड़ा काबा शरीफ है, और उस जमाने में तो कोई क्रेन्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, किस तरीके से
मैंने आपको किस तरीके से, अभी आपको मैंने फारसी बोली थी, वो जो मुकाम इब्राहिम का पत्थर है, हजरत इस्माइल गारा और ईंटें लेके आते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर के ऊपर खड़े थे, और अब आप देखिए कितना ऊंचा ये तामीर किया हुआ है। تو حضرت ابراہیم جو تھے وہ اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے, وہ پتھر آپ کو لے کے اوپر اور نیچے کی طرف آتا تھا. واؤ, اب یہ لیٹسٹ کعبہ ہے, میں نے یہ والے کعبے کی فارم میں نے نہیں دیکھی. آپ نے بھی نہیں دیکھی نا ماجد بھائی؟
میں دیکھی.
نو آپ نے, میرے آپ کے بعد میں بھی گئی ہوں. آئی ڈیڈ ناٹ سی دس, جس میں وہ بنا دیا گیا. اب انہوں نے یہ دیکھیں وہ جو طواف کے لیے جو ایکسٹرا جگہ بنائی ہے, آئی ہیونٹ سین دیٹ. آئی واز دیئر ٹو ایئرز اگو. یہ چیز میں نے نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے؟
نہیں.
نو آئی ہیونٹ سین دس. کہ کعبہ میں کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو انہوں نے کعبہ کے صحن کے بیچ میں یہ جگہ بنائی ہے, اور جو لوگ طواف کرتے ہیں وہ اس پہ سے طواف کرتے کرتے باہر سے باہر کی طرف ہی نکل جاتے ہیں, یعنی کوئی وہ رش کو روکا گیا. اینی ویز دس از بائی دا وے, جب میں اس کا ذکر کر رہی ہوں تو اٹس سیڈ ٹو اناؤنس کہ محمد بن سلمان جو شہزادے ہیں انہوں نے کہا ہے جی ہم سب پاکستان کو ایک اور تحفہ دے رہے ہیں مسجد کا. کسی نے بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا اور وہ آرٹیکل تھا خط محمد بن سلمان کے نام پہ. تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی مسجدیں تو ہمارے کونے کھینے کے بیچ میں, اگر آپ کو کچھ تعمیر کرنا تو کوئی لیبورٹری کے لیے پیسہ دے دیجیے گا پاکستان کو, اگر آپ کو کوئی کچھ کرنا ہی ہے تو کوئی تحقیقی چیز قائم کر دیجیے گا, بجائے اس کے کہ آپ ایک اور مسجد ایک اور مونیومنٹ کھڑا کر دیں. جب پہلے شاہ فیصل مسجد ہے, وی ڈونٹ نیڈ مساجد اینی مور, وی نیڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, وی نیڈ لیبورٹریز, وی نیڈ سم تھنگ وچ کین بی یوز فار دا ہیومینٹی. بہرحال یہ تو تھی ایک صورت حال. آئیے صاحب ایک ہدیہ نعت کی طرف آپ کو لے کے چلتی ہوں. یہ آخری اشرا ہے رمضان کا اور بہت خوبصورت اشرا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. بس یہ کوشش اور کاوش ہی ہے. میں تو رات وہی اگین, آپ کا جو اعتبار ہے جو بلیو ہے اپنے اسکول آف تھاٹ کو فالو کیجیے گا. صلاۃ التسبیح ضرور ادا کیجیے گا, کچھ بھی نہیں. صلاۃ التسبیح تیسرے کلمہ ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. کلام اعلیٰ بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے. سبحان اللہ پاک ہے اللہ کی ذات, والحمد للہ تمام تعریف اس کی ہے, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, میری تو کوئی طاقت اور کوئی کوشش بھی کوئی کچھ بھی نہیں, ولا حول ولا قوۃ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے العلی العظیم. صلاۃ التسبیح ادا کیجیے گا. آج کی رات کے نوافل کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو گین جیسے بھی آپ نفل ادا کریں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے بات بھی ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کی ضرورت ہے, ایمان کی سلامتی کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے, آمین سم آمین. اللہ تعالیٰ یہ جو ہم اتنے ڈیوائڈیڈ ہیں نا, ہم ڈیوائڈیڈ نہ رہیں. آئی وش کہ اگر ہم تمام کو قرآن پاک انڈرسٹینڈ کر لیں نا, تو اگر وہ ایک مینول کو ہی اگر ہم فالو کر لیں گے, آئی بلیو ہماری ڈویژن کسی حد تک کم ہو ضرور جائے گی. بٹ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کون کس کو کہاں بخش دے. اللہ نے قرآن پاک میں, میں نے خود اپنی آنکھوں کو صفت کے ساتھ پڑھایا کہ جب تم ٹریول کر رہے ہو اور سفر کرتے ہوئے کوئی تم کو السلام علیکم کہہ دے تو مت مڑ کے پوچھو اس سے کہ تم مسلمان ہو, کیونکہ دین اگر ایک انسان نے یہ کہہ دیا السلام علیکم تو دین دس از بٹوین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ دیٹ پرسن.
اور اسی طرح جب کسی مسلمان کے گھر جائیں تو یہ نہ پوچھیں کہ یہ حلال ہے, ضرورت نہیں یہ پوچھنے کی. اگر آپ کسی مسلمان کے گھر جائیں تو آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا جو وہ دے رہے ہیں آپ کو کھانے کے لیے کہ وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے. انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ آپ کسی نے آپ کو انوائٹ کیا اور آپ کسی کے گھر گئے اور وہ مسلمان ہیں تو وہ حلال ہی آپ کو دے گا. تو اسی طرح سلام کیا ہے تو اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی کہا گیا. تو بڑا سمپل ہے جی, بہت ہی سمپل. اگر آپ ریلیجن کو دیکھیں, ہمارا ریلیجن بہت سمپل ہے, اس کو زیادہ کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. جی ہر
دیکھیے صاحب, ہم تو کہتے ہیں نا کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو اس کو مار کے رکھ دیجیے گا. قرآن پاک کی اگر آپ تمام کو آتا ہے سورت نساء, مجھے میں اگین یہ اپنا اگر میں غلطی کرتی ہوں آپ مجھے کال کر کے میری غلطی کی بارے میں, مگر آپ مجھے اگر یہ کہیں گے کہ جی میں رول ماڈل قرآن کو بنا لوں, تو قرآن کو رول ماڈل نہیں, قرآن کو تو مجھے انڈرسٹینڈ کر کے اپنی لائف کو اس کے مطابق گزارنا ہے. دیٹ از مائی مینول آف لائف. दवाई खाने के लिए, मशीन को इस्तेमाल करने के लिए, वी हैव टू गो थ्रू द मैनुअल. दिस इज माई मैनुअल ऑफ लाइफ, आई हैव टू लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस. ये किसी ने एक बड़ा प्यारा सवाल किया, मैं आपको एक वीडियो भिजवाने की कोशिश करती हूँ. आई विल. कश्मीर की कोई एक हुर्रियत कमेटी है, तो उसके जो लीडर है ना, तो उनसे एक इंटरव्यू ने सवाल किया. उसने कहा जी अच्छा ये क्या. उसने कहा जी, बंदे ने बड़े, उसको नहीं पता था कि इंटरव्यूअर कहाँ से आ रहा है, तो उसने उसे सवाल किया कि क्या आप कहते हैं जिहाद के बारे में. उन्होंने कहा जी जिहाद हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, अल्लाह ताला कहता है जो बंदा है उसको उसको सजा दी जाए. खैर उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा अच्छा मौलाना साहब आप इस चीज पे. उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मुल्क के लिए जिहाद, इस्लाम के लिए जिहाद वगैरह वगैरह जिहाद की उन्होंने पूरी तारीफ कर दी. उन्होंने कहा जी आपके तीन बच्चे हैं, आपके बेटे डॉक्टर्स भी हैं, आपके बेटे वो भी हैं, आपने देखा है वो इंटरव्यू, तो आपके बच्चे तो रहते भी अब्रॉड हैं, तो क्या बात है कि आप अपने बच्चों को जिहाद पे ले गए, आपने तमाम बच्चों की बैरून मुल्क तालीम का बंदोबस्त किया है. आप यकीन कीजिएगा द मैन बस जिसके तो उसकी जुबान गुंग हो गई थी, ही डिड नॉट हैव नो प्लेस टू रिप्लाई. एक हदिया नात लगाए, मैं वो भी आपको सुनाती हूँ. मैं आपको जो सूरतुन्निसा की, देखिए आप आइएगा. अच्छा इसमें ये भी है कि अगर कोई शख्स तुमको सलाम कर दे तो तुम मत उससे पूछो कि तुम मुसलमान हो कि नहीं, ठीक, मत पूछिए उसको कि आप मुसलमान हैं कि नहीं, क्योंकि अगर उसने सलाम कर दिया तो नाउ द मैटर इज बिटवीन हिम एंड अल्लाह सुबहानहू तआला. अल्लाह फरमाते हैं सूरतुन्निसा की आयत नंबर में आप आ जाइएगा, आयत नंबर 92 की तरफ अगर मैं आ जाती हूँ. और मुसलमान का काम नहीं कि कत्ल करे मुसलमान को मगर गलती से. मैं अरबी की तरफ आ रही हूँ. वमा काना लिमोमिनिन अन यक्तुलू मोमिनन इल्ला खताअन वमन कतला मोमिनन खताअन. यानी मुसलमान का काम नहीं कि कत्ल करे मुसलमान को मगर गलती से, और जो करे कत्ल मुसलमान को तो आज़ाद करे गर्दन एक मुसलमान की, यानी एक मुसलमान को आज़ाद करे या खून बहा उसका अता करे जो पहुंचाए उसके घर वालों को, मगर ये कि अगर घर वाले भी आगे माफ़ कर दें. इसकी बड़ी लंबी आगे तफसील है. यानी वाज़े तौर पे अल्लाह ने कहा कि मुसलमान मुसलमान को नहीं मार सकता, और अगर मारता है तो फिर इसका खून बहा है, इसका आप खून के बदले में खून, हाथ के बदले में हाथ देते हैं, या आप पैसे के तौर पे अदा करते हैं, या आप जो भी दूसरी पार्टी आपको कह दे, मगर दूसरी पार्टी का कहना ज़्यादा ज़रूरी है. मगर अल्लाह तबारक व तआला बड़े गफूर रहीम भी, आगे वो कहते हैं कि अगर जिसको कुछ भी मुयस्सर ना हो, यानी उसके पास कोई खून बहा देने के लिए किसी और की जान भी मुयस्सर ना हो, किसी के पास पैसा भी ना हो, किसी के पास गुलाम भी ना हो जो गुलाम को आज़ाद कर सकता हो, तो फिर जिसको मुयस्सर ना हो तो रोज़े रखे 2 महीने के बराबर, गुनाह बख्शवाने को अल्लाह से, और अल्लाह जानने वाला है और हिकमत करने वाला. अल्लाह बड़े गफूर रहीम है. अगेन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये वो तरीका एक गुफ्तगू है जो अल्लाह तबारक व तआला का मेरे साथ है. जैसे मैं नमाज के लिए खड़ी होती हूँ, अल्फाज का लफ्जी मायने है. अगेन स्कूल ऑफ थॉट्स, आपकी जो भी हरी पगड़ी, गुलाबी पगड़ी, ब्राउन पगड़ी, वो दैट इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट, आपने बाद में डिवेलप करना है. मगर कुरान इतना मुश्किल नहीं कि जिसके साथ मैं लफ्जी तर्जुमे के साथ एक ताल्लुक है. आपका मेरे से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, मगर मैं एक अल्लाह और एक रसूल का पैगाम पहुँचाते हुए, वो मेरी ज़िंदगी उस मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए. द ईजीएस्ट वे इज़ टू अंडरस्टैंड दैट मैनुअल.
इसीलिए तदब्बुर तदब्बुर तदब्बुर,
बार बार कुरान पाक में तदब्बुर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया
कि आप इस पर गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते रहे उसको.
रमजान का ये आखिरी अशर है, और इसमें ज़कात जो आपकी मुकम्मल होने वाली है, अपनी ज़कात को मुकम्मल कर लीजिएगा. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल अशर. हर रात कोशिश करें कि थोड़े बहुत पैसे अल्लाह के नाम पे दे दीजिएगा. ज़कात में से ही देने, मसाजिद को भी ज़कात जाती है, इस्लामिक फाउंडेशन को.
آپ زکات دے سکتے ہیں. وہاں بے شمار اسٹوڈنٹس لوگ انحصار کرتے ہیں. اسلامک فاؤنڈیشن ہے, مسلم ویلفیئر سینٹر ہے, آپ کسی بھی ادارے کو, جو بھی جس ادارے کو بھی چاہیں, مگر ظاہر تین چار اداروں کے بارے میں ہم بارہا آپ کو کہہ رہے ہیں, جس میں مسلم ویلفیئر سینٹر ہے, اکنا, اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ, یہ بھی انٹرنیشنلی آپریٹ کر رہے ہیں. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ میرے
جو ہاسپٹل ہے ہمارا,
بھوک ہے اور افلاس ہے, تو
انڈس ہاسپٹل نام,
انڈس ہاسپٹل کو ضرور
کام کر رہے ہیں وہ لوگ.
انڈس ہاسپٹل, اب میں آپ کو بتایا کہ انسان تو خدا سے بھی خوش نہیں ہے, مگر انڈس ہاسپٹل کے بارے میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وہاں کلینلینس اینڈ نیٹنس کمال کی ہے, پیشنٹ کیئر بہت اچھی ہے, مگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ زکات بالکل 100% وہاں پہ لگتی ہے, ضرور زکات دیجئے گا انڈس ہاسپٹل کو بھی. آئیے صاحب, لے کر کے چلتی ہوں ایک کلام کی طرف. آپ مجھے تو دو تین قوالیاں یاد آ رہی تھیں, بہرحال کیا کہہ سکتی ہوں. ایک کمیونٹی, پرسوں رات پرسوں ایک کمیونٹی کی افطار ہے جس کو یہ ہماری یونیورسل پروموشن جو ہے اس کو عامر شمسی اس کو کر رہے ہیں, اور عامر شمسی کا آرگنائزیشن سکل تو کوئی شک نہیں ہے نا. یہ صاحب کولاچی اینڈ تازہ اس کو سپانسر کر رہے ہیں. تھرسڈے 6 تاریخ کو یہ ہوگا, مائے کولاچی, جو کہ 5120 ٹکسی روڈ کے اوپر واقع ہے, بیوٹیفل ریسٹورینٹ. وہ کہتے ہیں 770 ریڈیو پہ آپ اس کو ڈیٹیل سنتے چلے جائیں گے. یہ صاحب پہلے 150 لوگوں کو معذرت کی خواستگار, میں کوئی غلط بیانی نہیں کرنا چاہتی, 150 کی بجائے میرا خیال ہے 200 لوگوں کی, 200 گاڑیوں کی رجسٹریشن عامر کے پاس آ چکی ہے. تو 150 پیپل جو رجسٹر کرنا تھا جنہوں نے, یہ ناٹ 150, عامر گاڈ اراؤنڈ 200. ایک بات اور یاد رکھیے گا, وی ڈونٹ وانٹ اینی این آئی ریکارڈ, دس از ان دا ریکارڈ, نو کنفیوژن واٹ سو ایور. پر کار 2 ڈنرز دیے جائیں گے, دیز آر ویری گڈ ڈنرز, نو 3 ڈنرز ناٹ ایٹ آل, اینڈ آئی ریکویسٹ پلیز ڈونٹ سی ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, وی جسٹ وانٹ ایوری بڈی ٹو کم آؤٹ. آپ ٹائم لیجیے گا, تیار ہوں, اچھے طریقے سے تیار ہوں, تیار ہو کے گاڑی میں بیٹھے ہیں, لیٹس گو, ہیو میوزک آن, 770 بے شک لگایا ہو. یہ ڈکسی اینڈ ایگلنٹن کے ارد گرد سارے عید مبارک کے ہم وہ لگوا دیے جائیں گے, عامر ہی لگوائیں گے ان کو, اور بی پارٹ اینڈ پارسل ٹو دس. تو پر کار, بے شک 4 افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پر کار 2 ڈنرز دیے جائیں گے. آگے آئیں گے تو تازہ کی جانب سے آپ کو پر کار 1 گول گپوں کی ٹرے دی جائے گی. اسی طرح سے انعام ہوں گے, اور پھر آخر میں یہ آواز, ساز و آواز اور یونیورسل پروموشن کی طرف سے ایک خوبصورت کیلنڈر آپ کی نظر کیا جائے گا. دس از افطار کا پروگرام پہ نہیں, دس پروگرام واٹ آئی ایم سیئنگ از آن عید ڈے. عید از اگین آج, جیسے کچھ لوگوں کا آج ہمارا 23واں روزہ شروع ہونا ہے, کچھ لوگوں کا 22واں روزہ شروع ہونا ہے, تو یہ جو ہوگا نا, یہ ہوگا, اللہ آپ کا بھلا کرے, سیٹرڈے کو. جو عید کا پروگرام ہے وہ ہم سیٹرڈے کو کریں گے,
عید کے بعد والے سیٹرڈے کو.
ایگزیکٹلی, عید کے بعد والے سیٹرڈے کو ہم کریں گے. جی ماجد بھائی,
چلے صاحب, اجازت کا وقت آ گیا, اب میرا خیال ہے کہ اجازت لے لی جائے لوگوں سے, کیونکہ اب نعتیہ کلام لگائیں گے, اس کے بعد پھر ہم اپنے ریگولر پروگرامنگ کی طرف چلیں گے. تو دعا کی گزارش کر لیں
صاحب. میں نے زندگی میں, ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے, یقیناً اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اچھا ہو. ہم ہر نماز میں درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہی ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم, اہدنا سے سیدھا راستہ, صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, انمتا علیہم, جن پر تیرا انعام ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. آج کل بلکہ مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے جب میں نے سنا کہ ہر جگہ پہ حمد پڑھنی چاہیے, اللہ کو اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے. میں واجد بھائی یہاں آپ سے سوال کر لیتی ہوں کہ ثنا الحمد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم پہلی آیت میں تو پڑھتے ہی ہیں, تو اف سمبڈی وانٹس کین ریڈ ان آل 4 آیا,
نو
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 سٹرکٹلی, نو
سٹرکٹلی, دیٹس دی وے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم taught us
how to. I did not. I am so sorry. So اچھا پہلی ویری مچ
پہلی پہلی جب آپ رکعت میں یہ پڑھتے ہیں تو مطلب کوئی ایڈیشن نہیں ہے ہماری ریلیجن میں کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں ہے
وی کین ناٹ ڈو اینی سبٹریکشن اور ایڈیشن سو جزاک اللہ تھینک یو ویری مچ سو پہلی رکعت میں بڑی خوبصورت حمد ہے
جیسے چار آپ فرض پڑھ رہے ہوں تو اس کے بعد فرض پہلے دو فرض فرائض کے اندر آپ
ایک سورہ پڑھتے ہیں
مگر آخری کی دو میں نہیں پڑھتے اگر کسی نے چاہا کہ بھائی میں اس میں بھی پڑھنا چاہوں نہیں اجازت ہی نہیں اس کی تو آپ تو اس میں صرف الحمد پڑھ کے ختم کر دیں اس
exactly. مگر الحمد کے بغیر نماز نہ مکمل ہے لیجیے صاحب یہیں اجازت دیجیے گا میری درخواست ہے آپ مظفر علی اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے مظفر علی مجھے تو بلکہ بہت یاد آتے ہیں جناب باجوا صاحب عبد الرشید باجوا میرا بہت پیارا بھائی یہیں ٹورنٹو میں ہوتے تھے نا آپ یقین کریں ان کی موت کا بھی افسوس ہے رانا مقصود یہیں پہ ٹورنٹو میں مسساگا میں رہا کرتے ہوتے تھے رانا مقصود جوان آدمی ابھی چار سال پانچ سال پہلے چھ سال پہلے تو مجھے مٹھائی کھلا رہے ہیں کہ باجی میرا بیٹا ہوا آئی مس پتہ نہیں کون کون لوگ جدا ہو گئے ہم سے اور نہ معلوم کس کی کتنی زندگی ہے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ چلے گئے ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا سب کے ساتھ مظفر علی کو اور میں نے عبد الرشید باجوا ہیں رانا مقصود صاحب ہیں اور بے شمار لوگ جو آپ کے ڈاکٹر ڈار کے ہسبینڈ ہیں آپ کی بہن مجھے کل یاد آ رہی تھی ماجد بھائی کی بہن نوری بہن کہاں کے رمضان کی ناطے ہمارے ساتھ ریکارڈ کروایا کرتی ہوتی تھی آل آف سڈن لک ایٹ دس شی وینٹ اپنے قدموں پہ چل کے گئی ہیں ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے پرابلم آئی ہے سینہ کھول دیا ہے اندر ریسرچ ہو رہی ہے اینڈ دین شی ڈائڈ اور کہتے ہیں کہ موت سے پہلے شی اوپن ہر آئیز فلی کمپلیٹلی انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی حالانکہ ان کا سینہ پورا کا پورا کھلا ہوا تھا موت سے پہلے شی اوپن ہر آئیز اور اس نے جو بھی نرس تھی ہے جو کوئی بھی تھا اس کو دیکھا اس کی بات کو پتا نہیں کی کہ نہیں کی مگر دس از آل اوور دا لائف از کون کون لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہم پرابلمس کریٹ تب کرتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ناقابل تسخیر ہوں مجھے تو یہ لگتا ہے نہ معلوم ہم گھر بھی جا سکتے ہیں ہم بونس کی زندگی گزار رہے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے اللہ آپ کو اپنی جناب سے دے اور آپ کی اولاد کو نیک سارے رکھے اولاد کو بہترین کرے اور خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ دیتے ہاتھوں میں رکھے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کی ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ مجھے اسے ہمیں اس قابل ضرور رکھنا کہ ہم انسانوں کی قدر کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دیتے ہاتھوں میں رکھے اجازت دیجیے آئی لو یو اللہ حافظ
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.